सुखया लेक्चर नंबर 14 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय
ओम नमः
सिद्धेय सहजानंद जी लिखित यह सुखया नामक ग्रंथ है, उसके पहले भाग में भी हम पृष्ठ संख्या 61 पर आ गए। 61 देखो, यहाँ मैं 21 नंबर का जो उनका श्लोक है उसकी उसका प्रवचन देख रहे थे। यहाँ भी हम आए हैं कि अज्ञान से आई हुई विपत्ति का नाश ज्ञान से ही होगा। पहली लाइन 61 पेज पर, इसका अन्य कोई उपाय नहीं। वहां तक तो हमने पढ़ा था, जैसे किसी पुरुष को किसी बात पर भ्रम हो जाए तो वह भ्रम से दुखी रहता है, उस दुख का उपाय केवल भ्रम का नाश है। भ्रम दूर नहीं होगा तो दुख का नाश न होगा।
जैसे कथा सुनाता हूँ मैं,
हाँ,
जो असल में बनी है। जब हम कॉलेज सीखते थे, यानी जूनियर बीए में थे, तब हमारा ऐसा फ्रेंड सर्कल था। तो मेरे क्लास में एक लड़की थी, वो ऐसे दिखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी। तो हमारे दोस्तों में से एक का दिल उसके ऊपर लग गया, तो बहुत उसको वो ताके, उसको जाके बात करने की कोशिश करे, लेकिन वो लड़की उसको जरा भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। तो एक दफ़े क्या हो गया, ये रिया कॉलेज के सामने A1 ट्रेडर्स है ना, इधर अपनी दुकान थी, उसके सामने वो वहाँ से आ रही थी और यहाँ जा रहा। तो उसने क्या किया, अपने जेब से एक चिट्ठी निकाल के उसके हाथ में दी। तो उसने चिट्ठी तो ली नहीं, लेकिन एक उसको चप्पल निकाल के तमाचा मारा। मैंने कहा कि यार तू क्या कर रहा है, काय को पीछे लग रहे हैं। अरे तुम नहीं समझते हो, वो सच्ची कहो तो वो मेरे से आशिक है, मेरे पे प्रेम कर दिया। उन लोगों के सामने किसको नहीं समझे, इसलिए उसने मुझे चप्पल मारी। भ्रम का नाश भ्रम दूर होने
जैसे स्वप्न में देखी हुई खोटी बात से जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख का नाश नींद खुल जाने में होता है, उसका और उपाय नहीं है। जैसे मान लो आपको नींद में ऐसा स्वप्न आया कि जंगल में घूम रहे हैं, एक सिंह सामने खड़ा है, अपना ही कुशल नहीं यह जान पड़े वह चला आ रहा है, मुंह माए खाने आ रहा है। स्वप्न में यदि ऐसी बात देखते हैं तो कितना क्लेश होता है। ये पहले भी एक उदाहरण आया था ना, उस क्लेश को मिटाने का और कोई उपाय है क्या? बिजली का पंखा चला दिया जाए तो क्या वह क्लेश दूर हो जाएगा? उस क्लेश को दूर करने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि उसकी नींद खुल जानी चाहिए। नींद खुली कि देखा न जंगल है न शेर है, बस उसे आराम मिला। इसी प्रकार जगत के प्राणी मोह की नींद में सो रहे हैं और उनकी नींद से स्वप्न दिख रहे हैं कि यह नगर उसका है, यह दुकान उसकी है, यह दुकान दोबारा है, यह परिवार उसका है, यह दौलत उसकी है, यह मित्रजन उसके हैं, उसकी इतने लोगों में इज्जत है, इत्यादि नाना स्वप्न दिख रहे हैं। इन्हीं बातों को देखने से पल पल पर कष्ट हो रहा है। अगर इज्जत का स्वप्न देख रहे हैं तो इज्जत संभालने का क्लेश, इज्जत बढ़ाने का क्लेश, अगर इज्जत में कुछ धक्का लगा तो तो उसका क्लेश। धन का स्वप्न देखते हैं तो एक तो धन के संभालने का क्लेश, धन बढ़ाने का क्लेश, और धन में हानि पड़ती है तो उसका क्लेश। भ्रम क्या है? ये धन मेरा है, ये भ्रम। दुनिया की वस्तुएं हैं तो ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, जो उसने भ्रम पैदा किया है, और उनके कारण मैं सुखी हूँ, उनके कारण मैं बड़ा हूँ, ये उसने भ्रम पैदा किया अपने मन से, कल्पना से, इसलिए वो दुखी है। तो मेरा है तो मुझे बढ़ाना चाहिए, मुझे उसको कायम रखना चाहिए। ले जाएंगे, चलो अच्छा है। किसी भी प्रकार के विकल्प जो बनते रहते हैं, इस क्लेश को मिटाने का कोई उपाय है क्या? धन से होने वाले दुख को दूर करने का क्या यह उपाय है कि उसे दुगुना कम कर रख ले,
कमा कर,
सॉरी, दुगुना कमा कर रख ले? नहीं, इससे भी यह क्लेश नहीं मिटेगा। क्या इज्जत से होने वाले क्लेश को दूर करने का यह उपाय है कि किस प्रकार इज्जत को दुगुना बना ले? नहीं, यह भी उपाय नहीं है। उपाय केवल एक ही है कि मोह की नींद तोड़ दे। शरीर मैं हूँ और इन बाकी संयोगों के कारण मैं बड़ा हूँ, ये मेरी इज्जत है, लोग मुझे मानेंगे तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, ये जो उसने मान कर रखा है ये भ्रम है। अपने सत्य स्वरूप को देख ले। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, अन्य देखने वाला तत्व हूँ, क्योंकि मेरा तो केवल ज्ञान से ही स्वरूप है, केवल नहीं मात्र, ज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। मेरा लाभ ज्ञान से ही है, धन इज्जत परिवार आदि से मेरा लाभ नहीं है बल्कि हानि है। कोई मानेगा ऐसा? दो घंटे स्वाध्याय करने से क्या लाभ? दुकान में बैठेंगे तो धन तो आएगा ना, तो किस में लाभ माना? ज्ञान में माना कि धन में माना? यदि ज्ञान, जब ज्ञान वृक्ष बनकर बढ़ता है, फलता है, तब अनुपम आनंद होता है। यहाँ तो ज्ञान तो आत्मज्ञान को ही ज्ञान कह दिया है,
नहीं तो ज्ञान मत छोड़ जाएगा।
हाँ, बिना आत्मज्ञान के यदि केवल वो शास्त्र ज्ञान से ही ज्ञान होता है मानेंगे, तो उसमें भी वो कल्पना कर लेता है इसके कारण मैं बहुत बड़ा हूँ, अहम भाव हो जाता है। विकार भाव पाप है। इच्छा हो, हर्ष हो, शोक हो, क्रोध हो, पर के ग्रहण का विकल्प हो, पर के त्याग का विकल्प हो, देखो त्याग के विकल्प से तो बड़ा है, कैसे माना दिखो, सभी ये विकार है, पाप है। यानी जो जो विकार है वो सब पाप बताए। अब इन पापों से भी बढ़कर महापाप है इन विकारों में आत्मबुद्धि करना। ये हिंसा भी तो पाप लगते हैं, परंतु ये पुण्य के परिणाम है, उनमें जो आत्मबुद्धि है वो महापाप है ये नहीं लगता है। यानी मिथ्यात्व नाम का जो महापाप है, हिंसा को तो सारे पाप मानते हैं, अरे वो कितना पापी, इतनी हिंसा करता है, और जो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है वो, अरे वो तो धर्मात्मा है, इतना पुण्य कर रहा है, इतना त्याग किया है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? दुनिया क्या मानती है जब तक अभ्यास नहीं है? देखो यहाँ क्या कहा, इन पापों से भी बढ़कर महापाप है इन विकारों में आत्मबुद्धि करना। क्योंकि ऊपर का त्याग का विकल्प भी आ गया, वो तो स्वभाव रूप है ना, जैसे जिसको दुनिया शुरू समझती है, अभी वो किसके लिए त्याग किया क्या वो बात छोड़ दो। तो कहते विकारों में आत्मबुद्धि करना, इन्हें ही स्वयं जपना समझना,
जपना के बाद कॉमा देना क्या, डैश देना?
डैश डैश जपना समझना, कॉमा भी दे दो चलेगा, कॉमा है वहाँ पर जपना के
बाद,
हाँ समझना की बात। इन रागादिक विकारों में राग करना, जो राग का राग स्वामी जी बहुत बार कहते हैं ना, राग का राग है, यानी राग करने में वो तो अच्छा भला मान रहा है, राग का राग है उसका, क्योंकि मुझे तो पुण्य करना चाहिए, मैं तो रोज दर्शन करने किए बिना पानी नहीं पीता, मैं तो रोज स्वाध्याय करता हूँ। हो जाने दो, यहाँ क्या कहते हैं वो विकार है ये नक्की करना है अपने को, क्या समझना है ये शुभ भाव है, इतना नक्की करना है। और शुभ भाव होने दो ना, होने से किसने रोका है, राग होते हैं। अभी मुनियों को तो उच्च प्रकार के राग हो रहे हैं, राग होना ये बुरा नहीं है, उसको अपना अभी अभी हमने पढ़ा महापाप क्या है, इन विकारों में आत्मबुद्धि करना, ये मेरे हैं, इनके कारण मैं बड़ा हूँ, इनके कारण मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, ये मान्यता जो है अपना ही माना हो तो हम, अरे हमने बहुत बड़ी भूल की, ऐसा लगता है, खेद हो जाता है। नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये बात नहीं, अभी कौन सा उसमें भी कैसा फीलिंग होगा तो हर जीव का अलग अलग होगा, अपना मान ही रहे कि नहीं मान रहे, पर नहीं ये नक्की करो, खेद हुआ तो है। अब ऐसा खेद जब हमें आत्मा का चिंतन नहीं हो रहा है तो खेद होता है क्या, तो रूटीन हमारा मिस हो गया, इतना ही खोज खेद होता है हमारी, क्योंकि हमने वो क्रिया बना ली आचरण में लिया, ख्याल में आती है होता है वो आत्मबुद्धि तो पड़ी है उसके अंदर, तो ही हो रहा है, क्योंकि उसमें तो फिर तो राग आने वाला आ रहा है, उसका अभी नहीं आने का प्रयोजन, ऐसा नहीं होने का था, यानी उसमें ऐसा वहाँ पर अगर ज्ञान में आ जाता है तो ठीक है।
आज एक भाई साहब का फोन आया था, बोलते हैं हम आपके शिविर में आना चाहते हैं लेकिन मेरे एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा भैया क्या प्रॉब्लम है, तो हम सोले का भोजन खाते हैं, शुद्ध भोजन। मैंने कहा वहाँ व्यवस्था है, अब वो शुद्ध है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ हेमचंद जी अपने पंडित साहब हैं वे भी भोजन करते हैं, तो मेरे हिसाब से शुद्ध भोजन होना चाहिए। बोले अरे आपने तो मेरी समस्या ही मिटा दी, तो मैंने कहा मेरे को कुछ जमता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, तो कम से कम सोले का तो भोजन करूँ।
सोले का भोजन के लिए आ रहे
हैं? नहीं नहीं नहीं, जमता नहीं है, अन्य कोई त्याग आदि नहीं होते हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है, बहुत अच्छी बात है, करना जैसा है।
वो आने वाले हैं और बोला कि मिली को भी बुलाना। मोबाइल किधर है?
हाँ देखो देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, इन रागादि विकारों में राग करना ये महापाप है, ये सारे मिथ्यात्व का ही खोल के बता रहे, भ्रमणा क्या है, यानी विकार होना इतना भ्रम नहीं है, वो उसको हमारा मानना, उससे कल्याण होता है, उससे मोक्ष मार्ग शुरू होगा, ये मान्यता है, वो महापाप है। और ये मान्यता की बात कोई लेता नहीं, जब हिंसादि की बात है तो चौकन्ना होकर सुनते हैं क्या करना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, बहुत बहुत यानी उत्साहपूर्वक सुनते हैं लोग।
क्या मैंने सुना नहीं, ये गड़बड़ में रह गया, आपने कुछ लास्ट सेंटेंस बोला वो जानना चाहता हूँ।
क्या बोला? यानी उसको हम अपना चौकन्ना होकर सुनते हैं लोग, जब हिंसा आदि की बात आती है, क्या खाना क्या नहीं खाना, वो जीव समाज की बात आती है, सचित्व की क्या उसकी बात आती है, तो इतने एकदम उत्साहपूर्वक और प्रयत्न पूर्वक सुनते हैं अच्छी तरह से। मिथ्या तो क्या वजह, हाँ होता होगा ऐसा, यानी वो अपनी नहीं लगती है बात।
ऐसा है कि वो ये भूल जाता है कि मैं पर का त्याग और ग्रहण दोनों नहीं कर सकता हूँ, ये मूल बात तो उसके ज्ञान में ही नहीं है, सिर्फ मैं कुछ करूँगा तो बड़ा हो जाऊँगा या मेरा भला होगा, बड़ा इन द सेंस।
देखो और क्या क्या इसकी भूल हो रही है, देखो इच्छा करता हुआ ही वर्तने वाला मैं हूँ ऐसा ही मान रहा है, ये महापाप क्या है, मिथ्या तो क्या है उसकी बात है, यानी इच्छा ही मेरा स्वरूप मानता है, पर का ग्रहण और त्याग करता हुआ ही वर्तने वाला मैं हूँ, मैंने वो करना चाहिए और ये करना चाहिए, वो मेरा इस तरह से नाम था, यानी वो मैं स्थापन करने में उसने भूल की बहुत बड़ी। क्रोध मानादिक करता हुआ ही वर्तने वाला मैं हूँ, इस प्रकार के विकारों में आत्मीयता का होने वाला भाव महापाप है। आपने
मैंने,
पूछा ना?
हाँ। मैंने गलती से बताया आज का इंसिडेंट।
विकारों में आत्मीयता, देखो दार्शनिक मैदान में जब राग द्वेषादि भावों का परीक्षण किया जाता है तो कुछ भाई यह उत्तर देते हैं कि रागादि भाव पुरुष में नहीं होते, ये प्रकृति के विकार है, आत्मा में नहीं होते, प्रकृति के विकार, प्रकृति यानी कर्म, प्रकृति की चीजें हैं। जब तक यह भ्रम रहेगा कि ये रागादि मुझ में हुए तब तक संसार है। तब आगे यह भी जानना चाहो कि भ्रम किस में है, क्या पुरुष में भ्रम भाव होने की बात कही तो जो भ्रमी है वही दुखी हो, तो प्रकृति दुखी है, मोक्ष प्रकृति का कराओ, यानी वो सर्वथा प्रकृति का ही मानेंगे तो प्रकृति में भ्रम है और वही दुखी है, उसी का मोक्ष कराओ, जीव को कुछ करना ही नहीं है। यदि पुरुष में भ्रम भाव होने की बात कहो तो रागादि पुरुष में न हुए तो न सही, किंतु भ्रम रूपी महापाप तो पुरुष में हो गया। सर्व आपदाओं का मूल यही पर्याय बुद्धि है, यही भ्रमजाल है, सब इच्छा विकल्प क्रोध शोक आदि किसी भी पर्याय में आत्मबुद्धि न करो। मैं तो वह हूँ जहाँ मेरे ज्ञान आनंद आदि निजी वैभवों का साम्राज्य है, यानी स्वभाव भाव में मैं हूँ पने का, यानी मैं पने का एकत्व उसमें करना है, स्वभाव भाव में स्थापित करना है। और पर्याय अपने में होते हैं, विकार होते हैं, परंतु अपना वो कायमी स्वभाव नहीं है, ये मुक्ति करना है। वास्तव में ज्ञेय को ही जानता हूँ, जानने के लिए ही जानता हूँ, जानना मुझ में ही जानना है, इससे आगे में कुछ और कर्तव्य नहीं है। ऐसी भावना के बल पर जो अपने आप में रम जाया करते हैं उन्हें जो अनुपम आनंद मिलता है वह न तो इंद्र को नसीब है और न महाराजाओं को। समय दृष्टि ही होते ऐसी कोई जरूरत नहीं है, नहीं कोई भी इंद्र क्यों न हो, बाकी ऊपर के तो अहम इंद्र है सारे ग्रह वेक में, वो भी सारे इंद्र है, यानी मिथ्या दृष्टि जाते हैं ना ग्रह वेक में, वहाँ कोई एक इंद्र नहीं है, सभी इंद्र ही है,
अहम इंद्र है। और भवनवासी वगैरह उसमें कहाँ, सम्यक्त्व के साथ कौन जाता है?
इंद्र से संयम था वो भ्रष्ट हो गए, फिर वहाँ के इंद्र हुए, इस तरह से बातें होती है उनकी, अभी तो वो मिथ्या दृष्टि है। 40 हमने भवनवासी के दिव्यंतरों के 32 गिनो करने आती है। वह तो प्रभु जैसा आनंद में सामर्थ्य है कि कर्म कट जाएंगे, तपस्या से अथवा अन्य बातों में भी वह सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य सम्यक ज्ञान में है।
क्या बात,
यानी अपने आत्मा को ही ज्ञान को ही जानते रहो, उसी में ये सामर्थ्य है। इसीलिए यदि किसी मनुष्य को दुख दूर करना है तो वह निश्चय कर ले कि दुख केवल राग में है, जिस किसी पदार्थ में जो राग है उसी में दुख है, यानी जिस पदार्थ के प्रति राग है, पदार्थ में राग है ना, उस पदार्थ के प्रति राग है, तथा दुख दूर करना है तो तुरंत राग को दूर कर दे। राग करना मूर्खता है, कारण कि जिस बाह्य पदार्थ में राग पदार्थ से राग करते हैं वह अपने नहीं है।
क्या बात,
देखो बाह्य पदार्थ है तो वह अपने नहीं है। दुनिया में जो जो कुछ नाम है ना, उस नाम का जो उसको शब्द कहेंगे, वाच्य है, यानी वो ऊपर शब्द है उसका, वाचक है तो उसका वाच्य अवश्य होता है। जैसे सिंह है, घर है, फूल है, ये सब आकाश है, आकाश नाम का पदार्थ है, फूल है, फूल नाम का पदार्थ है, हमने उसमें बीच में संबंध जोड़ दिया, आकाश का फूल है ही नहीं, घर है, मैं भी हूँ, मेरा घर वस्तुएं तो है, तो उसमें हम जो संबंध लगा सकते हैं, कोई वस्तु किसी वस्तु की नहीं है, हम हर वस्तु में संबंध स्थापित करना चाहते हैं और फिर हमारे इच्छा के अनुसार होता नहीं है तो दुखी दुखी होते हैं। ये के
दुखी दुखी हो जाएगा, क्रोधी क्रोधी,
अब वही तो राग द्वेष करके दुखी हो रहे हैं, यानी अकेले क्रोध करके नहीं दुखी हो रहे हैं, प्रेम करके भी दुखी हो रहे हैं, उसके द्वेष करके नफरत करके भी दुखी हो रहे हैं, क्यों?
अभी मैंने उदाहरण दिया था ना,
राग करना
प्रेम करके भी दुखी हुआ
राग करना इटसेल्फ मूर्खता, कारण जिस बाह्य पदार्थ से राग करते हैं, 62 पेज, ये नया पैराग्राफ, इसमें कुछ आठवीं लाइन चल रही है,
62
जिस बाह्य पदार्थ से राग करते हैं वह अपने नहीं है, उनका रंच भी संबंध नहीं है। हमने हर एक के साथ कुछ ना कुछ संबंध स्थापित करने की कोशिश, और इसलिए और फिर हम राग करते रहते हैं। क्या कोई बाह्य पदार्थ तेरे द्वारा आया है? क्या कोई भी बाह्य पदार्थ तेरे साथ आएगा? यानी जो अन्य चीजें वो अपने से स्वतंत्र रूप से उनकी सत्ता है, उनमें है, हमारे कारण वो नहीं है। तो हमारे बच्चे तो हमारे कारण आए कि नहीं? 9 महीने पेट में रखा तो कहते वो अपने स्वतंत्र अपने में है, हम उनके साथ संबंध रखते हैं, इसलिए कहते राग करना मूर्खता है। पेज नंबर 62 पर है, ये नया पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, उसमें अभी सातवीं लाइन हमने पढ़ी। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, राग करना मूर्खता है, राग से हम दुखी दुखी हो रहे हैं। राग किनसे करते हैं? तो बाह्य पदार्थों से। तो जिनसे राग करते हैं वो अपना कहाँ है? बाह्य पदार्थ अपने हो ही नहीं सकते, प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, उनका रंच भी संबंध नहीं है,
रंच यानी किंचित मात्र,
किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्या कोई बाह्य पदार्थ तेरे द्वारा आया है? क्या कोई भी बाह्य पदार्थ तेरे साथ आएगा? ये तो धन तो हमने लाया ना, हमने कमाया तभी आया, ऐसा लगता है कि नहीं? क्या कोई भी बाह्य पदार्थ जिसे कोई कितना भी चाहे क्या उसके साथ जाएगा? प्रभु में तो साथ ले जाएगा ना,
पैसा
पैसा, ऐसे फैसिलिटी होती तो यहाँ कितना रखता बाल बच्चों के पूरा पूरा जिस किसी फॉर्म में थोड़ा भी नहीं रखता। क्या कोई बाह्य पदार्थ उसके सुख दुख में यहाँ या कहीं भी साथी होगा? बाह्य पदार्थ है जिसके लिए हमने इतनी कोशिश करके वो इकट्ठा किया, तो जब हम दुखी है तो वो सहायता करेगा कि नहीं? धन तो काम आएगा ना, अरे बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे हम धन से, क्यों? ऐसा लगता है जब धन नहीं ना तो धन के कारण हम दुखी, यानी धन के अभाव में दुखी, ऐसा नहीं होता तो आज कोई डॉक्टर नहीं इसलिए हम दुखी हैं, ऐसे पहले आता था कोई फैमिली में कोई माँ उसकी बिना दवा के मर जाती है तो बाप कहते हैं अभी बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, ऐसे कितने किस्से सुने होंगे आप? यह केवल आत्मा ही है और अपने में ही बना रहता है, इतना ही तो इसका मर्म है, इसके आगे इसकी कोई गति ही नहीं, गति ही नहीं है, दूसरा कोई इसका संबंध ही नहीं है बाहर में, वो अपने में ही परिणमित हुआ हो रहा है, अपने में स्वयं पूर्ण है बिल्कुल। राग करना निपट अज्ञान है कि नहीं? निपट यानी कोरा अज्ञान है,
निपट यानी टोटल,
वही तो
आपने क्या बताया,
कोरा अज्ञान है, कोरा
कोरा कोरा मैं बोला थोड़ा,
किससे राग किया जाए? भगवान और आत्मा में अंतर क्या है? यानी हमने आत्मा ने मैं कहता हूँ तो जो त्रिकाल स्वरूप है मेरा स्वभाव भाव वह मैं है, तुम भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं है, केवल राग होना या न होना यही अंतर है। उनका जैसा स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट हुई, स्वभाव तो वैसा का वैसा हमारे पास है, अंतर कहाँ है? यहाँ राग है और वहाँ दूसरा भी, इतना अंतर है ना। जहाँ राग नहीं है वहाँ केवल है भगवान, और जहाँ राग है वहाँ है केवल प्राणी। ये भगवान और संसारी प्राणी इस तरह से उसकी अंतरी है। राग करना तो व्यर्थ का काम है, क्योंकि राग करने से हाथ लगता तो कुछ नहीं, अर्थात राग करके आराम में तो कोई आता नहीं। जो वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करके राग छोड़ देता है वह भगवान बनने के समान है, और जो वस्तु के प्रति राग बढ़ाता है, राग रखता है, वह संसार में रुलने का काम करता है। पहले उन्होंने राग का त्याग करना तो कैसे करना उपाय बताया था, उन्होंने क्या बताया था? अपने को राग रहित देखो, क्योंकि स्वभाव में कोई राग है नहीं, पर्याय में है, पर्याय में उसका लक्ष्य छोड़ देना है और अपने स्वभाव पर लक्ष्य। मैं तो राग रहित हूँ, यही राग का छोड़ने का उपाय है। हे आत्मन, तू अपने आप को ही स्वयं दृष्टा देख, दृष्टा नहीं देखने वाला देख, या देखने वाला जो है वही तू है, जो जानने वाला है वही तू है। जानने से आगे न तू है न तेरा काम, यानी जानना मात्र मेरा स्वरूप है और उतना ही मेरा काम है, उससे छोड़कर उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा है नहीं। ऐसा सोचकर, चिंता दूर कर, विकल्पों को दूर कर, आराम से कुछ है, क्योंकि ऐसा सोचने तो आराम ही आराम है, और ये विकल्प करने से पर में तो कुछ होता नहीं है। अरे यह शरीर में कुछ नहीं होता है, न बाल बच्चों में, न धन में, न कहीं पर भी होता है कुछ, ये विकल्प करने से स्वयं दुखी होता है। इसलिए कहते आराम से कुछ है, आराम के मायने है प्रभु राम आ, चैतन्य महाप्रभु मेरे उपयोग में आ, यानी वो चैतन्य महाप्रभु कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूँ, और वो अपने ही उपयोग में ले जाए। जब जब आप मेरे उपयोग में रहे मैं आराम से रहा, जब तू मेरे उपयोग से हटा तो मैं विषय कषाय रूपी शिकारियों के चक्कर में पड़े हुए किरण के बच्चे के भांति विह्वल हो जाता हूँ, विह्वल यानी दुखी हो जाता हूँ, घायल हो जाता हूँ। जिन बाह्य पदार्थों से मैं घिरा हूँ वे मेरे लिए शिकारीवत है। एक तुम मेरे उपयोग से हटे कि मेरा आराम चला जाता है। तुम्हें स्वभाव भाव अपने को ही संबोधन कर रहे हो, तुम मेरे उपयोग से हटे तो कहाँ पड़ा कि ये विषयों के चक्कर में, जैसे शिकारी हो तो अपने शिकार को घायल कर देते। इस तरह आराम भगवान स्वयं किसी को नहीं दिया करते। भगवान तो न किसी पर प्रसन्न होते हैं न किसी पर क्रुद्ध होते, यदि वे ऐसा करने लगे तो वह भगवान न रहे, हमारी तरह अनाथ प्राणी हो जाए। क्यों तो आपने ऐसा क्यों कहा कि वो किसी पर प्रसन्न नहीं होते? क्यों नहीं होते? हाँ वो भी तरह ही है ना, बरोबर है, बिल्कुल बेसिक है ये। तो भगवान वितरागी होते, इच्छा से रहित हो गए हैं, तो पूजा करने वालों के प्रति प्रसन्न होना, उनका कुछ कल्याण करना, बिगड़ा हुआ बना देना, आजकल तो वो तो भगवान को तो बिना पैसे के सब सीरियल्स में बुला लेते हैं हम, कलाकारों को तो पेमेंट देते होंगे, भगवान को कोई पेमेंट नहीं मिलता वहाँ। असल जो कोई दुखी है तो भगवान के सामने अपना रोना रहता है, भगवान हमको सुखी करते।
सुखी होने के बाद सुखी होने के बाद याद करते,
वो सुखी होता नहीं ना, इसलिए भगवान को रोज रोज गिरा नहीं, नहीं तो उनकी सुखी हो जाए तो सीरियल कैसे चले उनके। यदि ऐसा करने लगे तो भगवान न रहे, हमारी तरह अनाथ प्राणी हो जाए। कैसा ही कोई भक्त हो उस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते, और कैसा ही कोई पापी हो इस पर भगवान क्रुद्ध नहीं होते। ये तो उस जीव की और उनके शरीर की जो तीन काल की पर्यंत को जान गए तो वे तो इच्छा से रहित हुए, वितरागी हुए, कभी तो जाते सर्वज्ञ हो गए। उनके तो किसी के प्रति राजद्वेष तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं। हाँ, भगवान को यह ज्ञान रहता है कि यह भक्त आत्मा कितना पवित्र है या यह पतित आत्मा है, परंतु वे न तो प्रसन्न होते हैं न क्रुद्ध होते हैं। और सच पूछो तो जो कर्म मुक्त भगवान है उनको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हाँ, उनकी प्रसन्नता अपने आप में ज्ञान के बल पर निर्भर है, वह भी है अपने सत्य स्वरूप से। यह ज्ञान जो कि जगत के सब पदार्थों से न्यारा, केवल अपने स्वरूप मात्र परम ज्योतिर्मय, केवल ज्ञान में विशुद्ध तत्व है, वही सार तत्वमय है। जैसे क्या कह रही है, किसका वर्णन चल रहा है, ये अपना लगता है क्या? ये दुनिया से सबसे अलौकिक ऐसा पदार्थ में एक है। क्या क्या बता देते, जगत के सब पदार्थों से न्यारा, ये सबसे जुदा है, ये केवल अपने स्वरूप मात्र और कैसा परम ज्योतिर्मय। ज्ञान को ज्योति की उपमा देती है, यानी तो सब कुछ जानने वाला है, केवल ज्ञान में विशुद्ध तत्व और वही सार तत्व मैं हूँ, ऐसा अनुभव वह अपने में करे तो उसे परम प्रसन्नता होगी, यानी उसके सुख की अनुभूति होगी, आनंद का अतीन में आनंद का अनुभव होगा, यही प्रसन्नता है। कोई दूसरा प्रसन्न होकर उसको कुछ देने वाला तो है ही नहीं। जब मेरे यहाँ भगवान, मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए तब क्या चाहिए, उससे बढ़कर और है क्या? इसलिए है आत्मन तो अपने को राग रहित देख। देखो बात वही आ रही बारंबार, एक तरीका भी उसका उपाय भी हर बार बता रहे, मेरा तो राग करने का स्वभाव ही नहीं, तेरा भी राग करने का कोई काम नहीं, तू तो ज्ञान स्वरूप है, तू तो जानता चला जा, सब कुछ जानता चला जा, जान कर रहे, जानने से आगे मत बढ़, जानने से आगे मत बढ़े ने ज्ञान तो कर रहा है, वो अपने को राग करने वाला भी ना है, तो जानने से आगे मत बढ़े ने दूसरा कुछ अपना मत मान, ये तो पूरी दुनिया का करने वाला मैं हूँ ऐसा मान, यानी वो दूसरे का कर रहे हैं, करता होकर अपने को मानता है, इसलिए कहते जानने से आगे मत बढ़, यानी आगे कर ही नहीं सकता है परंतु मान्यता में कर रहा, तो तेरे सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे, यानी अपने आप को मात्र जानने वाला वो सोचेगा, स्वीकार करेगा तो उसके सारे क्लेश ही दूर हो जाएंगे और तू अपने में अपने आप सुखी हो जाएगा। सुखी होने का मूल उपाय यही है कि राग को नष्ट कर, राग करके कष्ट दूर नहीं हो सकते। सबसे बड़ा विकट राग तो यही है कि अपने को नाना विकारों रूप मानना। नाना विकार है अनेक प्रकार के विकार, पुण्य पाप के परिणाम, ये सारे विकारी भाव है और वो मेरे है ऐसा मानना, ये सबसे महाभाव, सबसे बड़ा विकार है। परमार्थता, परमार्थ जो है रियलिटी में वस्तु वृत्ति से देखो,
वास्तविक
मैं शुद्ध ज्ञायक स्वरूप हूँ। शुद्ध उसी को करते हैं कि उसके उसको छोड़कर अन्य नहीं कुछ, वो शुद्ध है। पर पदार्थ का प्रतिभास होता है, इससे पर का न कोई संबंध है और न मुझने पर की कोई कर्तृत्व है। क्या कहा, पर पदार्थ का प्रतिभास होता है ना, पर पदार्थ का जानना मेरे में, मेरे अपने कारण मुझ में हो रहा है, उसमें पर से कुछ नहीं आता है, पर के उसमें कोई कर्तृत्व नहीं, उसका उसमें कोई पार्ट नहीं है, ये जानना मैंने अपने स्वयं के स्वभाव से जानने का कार्य अपने में हो रहा है, पर के कारण नहीं हो रहे, पर के कर्तृत्व नहीं। तो कहते ना वो तो घड़ी देखकर ज्ञान हुआ कि नहीं, तो उसमें घड़ी का कुछ कर्तृत्व होगा कि नहीं, आपको ज्ञान हुआ उसमें, ऐसा ही लगता है कि वो नहीं होता तो हम कैसे जानते हैं, कहाँ कहाँ से सोचते, पर की ओर से, परंतु जानना हमारा स्वभाव है ना, नहीं होना अगर कोई चीज नहीं है तो कैसे जान सकते। अगर ऐसा क्वेश्चन हम प्रश्न खड़ा करेंगे तो केवली भगवान कैसे जानते कि पर्याय अभी नहीं है वर्तमान में, हो चुकी है, होने वाली है अनंत काल के बाद भी, अभी तो नहीं है ना विद्यमान, उसको कैसे जानते हैं? क्योंकि जानना स्वभाव, उसमें कोई लिमिट नहीं है। वर्तमान जो पर्याय है वो तो हम आप तो उसमें भी कितने थोड़े जानते हैं, और केवली भगवान सभी द्रव्यों की सभी द्रव्य पर्याय वर्तमान से ही नहीं, नॉट ओनली वर्तमान, पूरे अनादि से अनंत काल तक की सभी। ऐसे ज्ञान में रहकर ज्ञान का ही ये स्वभाव है कि सबको जानने रूप परिणमित हो जाए, उसके लिए पर पदार्थ की किंचित मात्र अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। और हम इतने निमित्ताधीन दृष्टि, अरे सामने नहीं होगा तो कैसे जानेंगे उसका, यही कह रहे हैं कि पर पदार्थ का प्रतिभास होता है। क्यों? मैं ज्ञायक स्वरूप ने जानना मेरा स्वभाव है, तो मैं अपने स्वभाव से जानने का कार्य कर रहा हूँ, अपने स्वभाव से ही पर को जानने रूप परिणमन मैं अपने में अपने से कर रहा हूँ, उसमें पर की कोई प्रस्तुत नहीं है।
यहाँ जो लिखा है पर पदार्थ का प्रतिभास होता है, प्रतिभास यानी भास होना आभास होना, वो बात नहीं है, जानना होता है,
जानना। ये पर पदार्थ का ज्ञान ऐसे कहेंगे, परंतु हम अपने ही या हमारे ज्ञान की पर्याय पर पदार्थ हमको जानने रूप हम स्वयं परिणमित हो रहे हैं अपने में, तो वो कौन सा परिणाम हो रहा है उसको समझाने के लिए हम कथन में आता है कि मैंने पेन को जाना, पेंसिल को जाना, पुस्तक को जाना, पुस्तक का ज्ञान नहीं है तो मेरे अपने ज्ञान की पर्याय उस रूप परिणमित होकर निकले अपने कारण। ये स्वतंत्र जो परिणमन है हरेक द्रव्य का वो ख्याल में लेना है, इसलिए कहते हैं न पर का कोई संबंध है ना मुझमें पर की कोई करतूत है, यह तो ज्ञान का सहज विलास है। तो कितनी बात तो बताई, ज्ञान का सहज विलास है, नहीं ज्ञान का ही सहज स्वभाव है और विलास है, वो स्वयं प्रकट हुआ पर्याय रूप, वो परिणमित स्वयं होगा। ज्ञान ऐसे ही रूप को लिए हुए है, यानी ज्ञान उसी को कहते हैं, वो स्वयं ज्ञान अनुरूप प्रकट हो रहा है उसकी पर्याय, वो अपनी योग्यता से जो जिसको जिस संबंधी ज्ञान होना है वो अपने से हो रहा है। मैं इसी सहज ज्ञान मात्र हूँ, तो ज्ञान द्वारा ज्ञान में निज स्वरूप में ज्ञान के लिए ज्ञान मात्र वर्त कर स्वयं सुखी हो। तो हम कहते हैं सहजानंदी या हूँ स्वतंत्र निश्चल संस्था, यही कहा है। अब 22 नंबर को पढ़ना है,
यदा सदा सीमे प्रीतिर्भोगे समयमात् दीनवज्योतिजावानि स्यां तस्मै स्वे सुखी स्वयं।
जिस समय मेरे अज्ञान का असत भाव था, तब भोगों में आत्मा का या आत्मीयता का भ्रम होने से मेरी प्रीति हुई। अज्ञान का असत भाव क्यों कह रहे हैं?
अज्ञता,
यदा अज्ञता तदा
असीन में
आसित आसित खाम है आसित में प्रीति भोगे तो विभ्रमात्। अच्छा, यानी अज्ञान में असद भाव था, ऐसा नहीं, असद भाव यानी वो
खोटा
भाव, वो खोटा भाव इस तरह से अज्ञान में खोटा भाव था, असद भाव भ्रम भाव था, यानी अज्ञान का असत नहीं, अज्ञान असत था ऐसा नहीं है, असद भाव यानी खोटा भाव। तब भोगों में आत्मा का या आत्मीयता का भ्रम होने से, यानी जो इंद्रियों के विषय है जानने का कार्य कर रहा था, पर वो मान रहा था मैं भोग रहा हूँ, और उसने अपनापन रखा और उसका भ्रम होने से मेरी पीछी हुई। अब ज्ञान भाव होकर, ज्ञान स्वभाव होकर, अब ज्ञान स्वभाव होकर भी मैं दीन अर्थात भ्रमी जीवन की तरह क्या आत्मा के उपयोग से बाहर पदार्थ में दौड़ू? यानी अभी कहते कि अभी तो मुझे आत्मा का भान हो गया, तभी मैं दीन होकर पर पदार्थ में क्यों दौड़ू? ये कह रहे फिर से पढ़ते, यानी जब अज्ञान भाव था तो भोगों में वो मैं इसको भोग रहा हूँ जिसको हम भोगता बुद्धि कहते हैं, वो भाव था, और विषयों के प्रति प्रतिप्रीति थी। अब कहते कि अब ज्ञान स्वभाव होकर भी, मैंने अभी तो ज्ञान स्वभाव को जाना, मैंने अब भी मैं भ्रमी जीवों की तरह यानी अज्ञानी जीवों की तरह आत्मा के उपयोग से बाहर पर पदार्थ में दौड़ू? दीनव दीनों की धावानी, ऐसे ऊपर प्रश्न चिन्ह डाला, मैंने मैं क्यों दौड़ू इस तरह? अभी मुझे क्या आवश्यकता है वहां जुड़ने, ये कहना चाहते, मैं तो अपने में, अपने लिए, अपने आप स्वयं सुखी हो। यद्यपि यह जीव ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है, तब भी अपने इस स्वरूप को न जानने के कारण इसको अपने आप में संतोष तो मिलता नहीं, तब बाहर संतोष ढूंढता है। तो ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण, किंतु बाहर कैसे संतोष मिले? इसका सुखी होने का स्वभाव है, इन्हें स्वभाव में सुखी होना पड़ा है, भीतर तो सुखी होता नहीं, तो सुख बाहर के पदार्थों में ढूंढता है। बाहर सुख ढूंढने में त्रिकाल में भी सफलता नहीं प्राप्त होगी, ठिकाने कभी भी नहीं होगी, क्योंकि सुख बाहर से ढूंढने से मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब अपनी अपनी सत्ता में, वे अपने बाहर कुछ नहीं करते, उनका उनसे बाहर कुछ नहीं आता, तब उनसे आशा करना विपत्ति ही तो है। जब तक यह कुछ ज्ञान था कि परपदार्थ से उसे सुख मिलेगा, तब तक भोगों में प्रीति थी, किंतु अब स्वयं यह जान लिया कि दूसरे पदार्थ से सुख नहीं मिलता, सुख स्वरूप हम ही तो हैं। जब यह ज्ञान वाले हुए तब उनके भोग में प्रीति नहीं रहती, किसी धोखे वाली जगह में प्रीति तब तक होती है जब तक उस विषय का सच्चा ज्ञान नहीं होता। परिवार का आज्ञाकारी होना, सैकड़ों हजारों कोसों में यश और कीर्ति का फैलना, यह सब माया है और इसमें फंसे तो आत्मीय आनंद से हाथ धोए। जैसे अन्य लोग कहा करते हैं, किसी ने जब बड़ी तपस्या की तो इंद्र को डर लगा कि कहीं उसका आसन न छुड़ा दे, तब कोई सुंदर अप्सरा उसने भेजी, वह रूप हाव भाव मुझसे दिखाकर नाना उपाय कर ऋषि को सिगा दे। अन्य मते में ऐसे बहुत सी कथाएं आती हैं। अब देखो वे सब राग के कृत्य अपने में देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु यह सब धोखा है, उस धोखे में गए तो बस तपश्रम उनका बाद में खत्म हो जाएगा। इसी तरह आत्मा में उत्कृष्ट आनंद भरा है, अनंत आनंद स्वभाव है, उस आनंद स्वभाव में परमात्म तत्व को अपने स्वभाव के दर्शन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री पुरुष भले ही उसे मिले तो क्या मिले, वे स्वयं दीन आत्मा है, उनमें हमें दुख ही होता है। कुटुंब अच्छा मिला तो क्या मिला, तुम्हारे तो आत्मा ही साक्षात भगवान है, यह स्वयं वैभव है, यह माया कुछ नहीं केवल भूल है। अपने स्वभाव की उपासना में लगे और इन भोगों से दृष्टि हटे तो वहाँ जानना है, यहाँ के पदार्थ तो यो ही मिले हैं और यो ही जावेंगे। एक कथानक है कि एक चोर ने किसी सेठ के यहाँ से घोड़ा चुरा लिया और बाजार में खड़ा कर दिया। ग्राहक बोलते हैं, बोलो क्या दाम है इसका? उसने कहा 600 रुपया। तिगुना दाम बताया तो सब लड़ गए। इस तरह 200 लड़ गए। 11वीं बार दूसरा आया, उसने भी दाम पूछा, उसने उससे भी कहा 600 रुपया। उसने समझ लिया कि इसने चोरी की है। ग्राहक बोला, इसमें ऐसी क्या बात है? चोर कहने लगा, इसकी चाल बढ़िया है। ग्राहक चाल देखने के लिए घोड़े पर बैठ गया। मिट्टी का हुक्का उसको पकड़ा दिया, उसको कहा, जरा पकड़ो तो, और आप घोड़े पर जा बैठा। ग्राहक घोड़े को बहुत दूर ले गया और उड़ा ही ले गया। दूसरे लोग आए, कहा, भाई तुम्हारा घोड़ा बिक गया? कितने में बिक गया? बोला, जितने में लाए थे उतने में बिक गया। पूछा, मुनाफा क्या मिला? कहा कि 3 आने का यह मिट्टी का हुक्का। पहले सुना हुआ है, ये बहुत सारी कथाएं सुनी हुई है। जैसे आया वैसे गया। इसी तरह ये सारे पदार्थ 1 पैसे से लेकर खरबों रुपए तक हैं। ये सारे के सारे मुफ्त में ही मिले हैं। चीज तो न्यारी है, तुम्हारा अपना क्या गया उसमें? तो भैया, यह सब जो पाया है तो मुफ्त में ही मिला है और मुफ्त में ही जाएगा, आज कुछ नहीं रहेगा। क्या भाव बना कि यह मेरा है, परिवार मेरा है, ऐसा उन्होंने परिणाम बना लिया। किंतु ज्ञानी पुरुष जानता है, दुनिया में मिला मुफ्त में यह है और मिटेगा भी मुफ्त में यह। कोई साथ में नहीं रहेगा, पर भाव मिटाने को आए हैं,
मिटने को,
पर भाव मिटने को आए हैं और मिटने नहीं जाएंगे। यानी मिटने के लिए आए और मिटने नहीं जाएंगे। कुछ मुनाफा मिला कि नहीं मिला? न कुछ गया। कहते मिलेगा क्या? पाप का हुक्का। जो जो मिला है वह नहीं रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा। अरबपति लखपति के पास नहीं रहेगा, पंडित के पास भी नहीं रहेगा, कुली के पास भी नहीं रहेगा, पहलवानों के पास भी नहीं रहेगा। पर जो पुण्य पाप जिंदगी में किया वह साथ रहेगा, उसके अनुसार सुख दुख के साधन सब मिले। भैया, जब अज्ञान था भोगों के प्रति प्रेम था, ठीक है, पर अब तो ज्ञान है। तू तो एक चेतनामय स्वरूप मात्र सर्वस्व है, केवल ज्ञान मात्र है, सब में मिला और सबसे जुदा, एक आनंदमय पदार्थ है। सब में मिला और सबसे जुदा, यानी वो तो संयोगों में होते हुए भी सबसे जुदा है। सर्वसाधारण एक पदार्थ है, जिसका नाम भी नहीं है, जिसका भाग भी नहीं है, परंतु एक पदार्थ है, उसे तो भूल गया। और आगे की दुनिया में दृष्टि रख कर इस माया की दुनिया में लग रहा है और आनंद के सपनों को सत्य समझ रहा। माया इसलिए कहा कि ये इसकी भ्रमणा है, इसलिए इसको माया कहते हैं। जगत माया नहीं है, ये इनके प्रति इसका जो ये मेरा 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 ये सब माया, इसी से दुख होते रहते हैं। अब तक तुमने कितने भव व्यतीत कर डाले, अब केवल एक इस भव को ही भोग रहित और ज्ञान सहित बिताओ, कोई हर्ज नहीं। क्या कहना, अनादि से आज तक कितने भव बिताए, तो अनंत 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 उसकी कोई गिनती नहीं है। एक भव में ये प्रयत्न करना, क्या करना है, भोग रहित और ज्ञान सहित बिताओ, कोई हर्ज नहीं। यह एक भव जो अब पाया है तो यह समझ लो कि इसको पाया ही नहीं है। पाया है तो अपने में गुप्त रहकर ही धर्म साधना के लिए पाया समझो।
अरे, आप कौन सा पेज पढ़ रहे हैं?
आपने लेके
69 आया मेरे पास।
65 पेज
बीच के गए, 64 से 4-5 पेज गए। थर्ड होगा इधर, 74 आया, 73, 74, 80 ये 65 आगे पीछे।
अच्छा,
पढ़ लो।
अब केवल एक ही भव को ही भोग रहित वो ज्ञान सहित बिताओ, कोई हर्ज नहीं। यह एक वो जो अब पाया है यह समझ लो, इसको पाए में क्या कहना चाहते हैं।
अभी तक बहुत सारे भव आए,
यही काम किया,
क्या किया,
सबको अपना अपना मानकर, और वो मैं भोगता हूँ, इसको भोगी उसको भोगी, ये मान्यता में लेकर वो भव बिताए, आयु पूरी करी, मैं कर रहने के चला। अब ऐसा मान लो कि ये भव मिला ही तो मिला ही नहीं है, नहीं हो तो कहते ना कि जैसे आपको क्या लगता है ये सब करके बेकार गया। हाँ ऐसा समझो, मानो बेकार जाने वाला, मिला ही नहीं ऐसा मानो, और क्या करो इसमें लगा दो। ऐसा आता है ना कि गन्ने का वो तो बो दे उसको, तो उसमें से फसल उगल, ऐसा ही कहते कि इसको इसके लिए काम मिला, और ऐसा समझो कि हम मिला ही नहीं आप, क्योंकि मिलने के बाद क्या समझते हैं, नहीं अभी इतनी दुनिया है तो भोगना चाहिए कि नहीं, इतना धन है, इतना हमने कमाया है, तो कहते अभी ये मिला नहीं बहुत, ऐसा समझ लो और इस काम में लगा। तो पाया है तो अपने में गुप्त रहकर ही धर्म साधना के लिए पाया समझो, तो मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। अपने में गुप्त होकर है, अपने को अपने ज्ञान द्वारा अपने को ही जानते रहना और कुछ नहीं करना, शांति और आनंद का मार्ग मिल जाएगा, फिर तू सदा के लिए मिल जाएगा, नहीं बल्कि सुखी हो जाएगा। एक मोह को छोड़ दे तो सदा के लिए तेरे क्लेश मिट जाएंगे। हे आत्मन, तू ज्ञान स्वरूप है, तेरे में जन्म नहीं मरण नहीं, तू तो एक ज्ञान स्वभाव मात्र है, और ये तो मरने के डर से ही मरा जा रहा है। नहीं समझे, सबसे ज्यादा डर किसका है, मरने का। बीमारी में जो कुछ क्लेश होते हैं उसकी छोड़ बात, उसकी कोई डरता नहीं इतना, पहले में पहले दौड़ता क्यों है डॉक्टर के पास, इसमें मैं मर न जाओ, ये सबसे बड़ा डर है उसके पीछे। तो कहते कि तू तो ज्ञान स्वरूप है, न तेरा जन्म है न मरण, वो तो हम तो अनादि से ऐसे है, हमारे ज्ञान स्वरूप में तो कुछ बाधा नहीं डाली, परंतु क्या हुआ, ये राग को अपना मान रहा है, तो नए नए शरीर धारण किए और उसी को मैं हूँ मान रहा है, और इसी भूल के कारण नया नया शरीर और धारण करता है। इसलिए ये पहले नक्की करना है, यहाँ तो तू कहा, हम कहेंगे हम तो ज्ञान स्वरूप है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे में जन्म नहीं मरण नहीं, मैं तो एक ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ, इस स्वभाव में न जन्म है न मरण है, न क्लेश है न दुख है, उस तेरे स्वभाव ने अपने स्वभाव में कुछ भी तो विकार नहीं है, तो अपने इस स्वरूप को देख सबसे निराला बन, केवल तू ही यह स्वयं आत्म ज्ञान मात्र है, आनंदमय है, कोई झगड़ा नहीं कोई विवाद नहीं, उस स्वरूप को देख सबसे निराला बन, उस स्वरूप से जरा भी हटे जरा भी चाहिए जरा भी शिथिलता डाल दी तो गलतियां बढ़ती चली जाएगी, जहां कहीं सवाल के हल करने में पहले पहले कोई गलती कर दे तो वह गलती बढ़ती ही चली जाती है।
मूल माँ बोल
ये सवाल के हल करने में कोई गणित है, ये दो पाँच पाँच और पाँच दस, दस और दस बीस, बीस और बीस चालीस, चालीस और चालीस अस्सी, अस्सी और अस्सी एक सौ साठ, बराबर है ना, क्यों दो पाँच, यही कहा सवाल के हल करने में पहले पहले कोई गलती कर दे, गणित हम ये इसको हम टोटल कर रहे हैं, तो वो गलती बढ़ती चली जाती है। इसी तरह स्वयं में गलती करते आए तो यह गलती बढ़ती चली जाती है, कितना भी यह क्लेश होता है वह तेरे भ्रम से होता है, पहले पहले भ्रम मान ले कि शरीर मैं हूँ और आगा भी मेरे, वो मेरा स्वरूप है, मुझे ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, वो क्या है, यही पहले भ्रम है। तो जितना भी क्लेश है वह तेरे भ्रम से होता है, जब यह भ्रम होगा कि मैं कुछ नहीं, जब यह भ्रम होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ किंतु दूसरे के बल पर मेरा जीवन रहता है, यानी वो मानता है मेरे में मैं तो कुछ है ही नहीं, और दूसरे के कारण, दूसरे ने सभी के कारण मैं हूँ, धन के कारण मैं हूँ, इज्जत के कारण मैं हूँ, तो कहते कि दूसरे के बल पर मेरा जीवन रहता है, दूसरे के बल से ही सुखी होता है, दूसरे के बल पर ही मेरी जिंदगी का ठहर होता है। जब ऐसा मिथ्या ज्ञान तेरे में आएगा तो अपने आप में कहीं संतोष कैसे पाएगा? क्योंकि इसने पल के कारण ही अपनी जिंदगी मान ली है, उसके कारण ही संतोष सुख सब उसी के कारण, धन के कारण माना है, परिवार के कारण माना है, अन्य अन्य के कारण माना है, शरीर के कारण माना है। शरीर का बल होगा या निरोगी शरीर होगा तो ही मैं सुखी, यानी उसने अपने अस्तित्व अपना माना ही नहीं, यही मेरा अस्तित्व मान लिया। और फिर उसको लगता है अभी इसका अस्तित्व मिटने को आना है, तो हाय मैं मर गया। जैसे किसी से कोई कहे तुमको जो कुछ चाहिए तो ले लीजिए, 24 घंटे बाद दूंगा, तो वह 24 घंटे उसके पीछे सोच में ही बर्बाद होगा, उसको एक घंटा भी सुख न हो सकेगा। समझ नहीं बात, इसके आप मांगे वो दे देंगे 24 घंटे के मिलते, 24 घंटे के बाद दूंगा, तो क्या मांगना है उसके बारे में तो सोच सोच कर पागल हो जाएंगे 24 घंटे में। उतनी बात की आशा में उसको इस 24 घंटे की परेशानी हुई, अब क्या ठिकाना जब 24 घंटे पूरे होंगे तब कहाँ की बोल क्या चाहता है, तो कहाँ माफ करे। अब जब तक मांगा भी नहीं तो कल्पना में 24 घंटे खराब हो गए, और अब मैं तुमसे ले लूंगा कुछ तो जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई कहता है कि जीव हवा है, कोई कहता है कि सांस है, अनेक रूप में इस जीव की कल्पना होती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि हवा है या सांस है। आया सो आया, गया सो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यह जीव तो ज्ञानानंद घन पदार्थ है, ये तो उसकी अपनी अस्थि है, अपना अस्तित्व है, वो अच्छा अपना वो कोई सब्सटेंस है, मटेरियल उसे ज्ञानमय पना वाला जो पदार्थ है उसे, इसलिए ज्ञानानंद घन पदार्थ कहा। केवल ज्ञान मात्र है, भाव मात्र है, केवल चैतन्य भाव मात्र है, ठोस है, समझे नहीं, एक चीज है घन, विज्ञान घन, आनंद घन, इसलिए घन स्वरूप अभी ठोस है। ज्ञान घन व आनंद से परिपूर्ण है, धोखे की कोई बात नहीं, जो उसको सार रूप में नहीं पकड़ता उसके लिए धोखा है। शरीर में जीव का बना रहना क्षणिक है, किंतु शरीर में जीव का बना रहना, यानी जीव उसी शरीर में रहे ये बात नहीं हो सकती, वो तो क्षणिक है, परंतु शरीर जिन परमाणुओं से रचा हुआ है, न तो वे परमाणु क्षणिक है और न ही जीव तत्व ही क्षणिक है। क्या कहना चाहते हैं, जीव का और शरीर का संयोग क्षणिक है, शरीर जिन परमाणुओं से बने हैं वो परमाणु शाश्वत है, अभी वो जीव तो वो पर्टिकुलर परमाणु आकर अभी शरीर रूप से होकर जीव के साथ है, कहीं परमाणु तो अनादि अनंत तो रहेगी, उनके अन्य अन्य स्कंद बन जाएंगे, और जीव भी कायम है अनादि अनंत है। अभी ऐसा कुछ अभी वर्तमान में ऐसा हुआ है, ये एक जीव और ये अनंत परमाणु वो अभी इकट्ठा जाएगा, वो शरीर रूप से स्कंद बना है या जीव को है, वो उनका ये संबंध जो है वो कायम ही नहीं, वो क्षणिक है, परंतु जो जो वहाँ द्रव्य है वो अपने में शाश्वत है। जीव क्षणिक नहीं, वह तो ठोस पदार्थ है, वह आनंद घन है, मजबूत तथ्य है, उससे बढ़कर संसार में कुछ है ही नहीं। हमारे तो हम ही कुछ है, सब कुछ है, इतने अनंत पदार्थ है, पर उसको जानने का तो मैं अपने में रहकर ही सबको जान सकती हूँ, तो मेरे लिए मैं ही सब कुछ ये कह। जो इसको समझ लेता है वह आनंद मग्न हो जाता, जो नहीं समझ पाता वह जगत में सब जगह ठोकर खाता है, बाह्य पदार्थ की हानि से अपनी हानि समझता है, बाह्य को अपना सब समझता है, यानी बाह्य में कुछ वृद्धि हुई तो मैं बहुत बढ़ गया, मैं बहुत अच्छा हुआ, अकिंचन भाव रहा तो यह आत्मा वैभव पूर्ण है। अकिंचन यानी वो तो परिग्रह रहित वाला है, क्योंकि वो तो सबसे जुदा है, अकेला है, उसका कुछ है ही नहीं है, इसका और कुछ है ही नहीं। जो बाहर में अपना कुछ मानते हैं वे ही पर की उधेड़ बुन में पड़ेंगे, मेरा कुछ है ऐसे भाव में बेटा चला जाता है, वो तो तोते में रहता, तोते में नहीं नुकसान में रहता। और जो उसको कुछ नहीं है ऐसा निर्णय करके सबसे पृथक होकर केवल आत्मा राम से मेह लगा लेते हैं, इनके लिए सर्वोत्कृष्ट वैभव प्राप्त होते हैं। ये मेरी बाह्य वैभव की है, उसका अपना पूरा आत्मवैभव मिल जाए, उसके बाह्य वैभव से कुछ नहीं लेना है। उसको इंद्र का वैभव या चक्रवर्ती का उसमें उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आत्मा का वैभव ही सच्चा वैभव। इस महत्व से ही परमात्मा की हम पूजा करते हैं। बतलाओ क्या है उनके पास दूसरी चीज? एक पैसा नहीं, एक धागा नहीं, एक अनाज का दाना नहीं, जरा सा कुछ नहीं। जब भी आप उनकी उपासना में लीन होते हैं, भैया बाह्य पदार्थ की जिद न करो। जो कर्म आपने किया है, जो गति बन गई है, सारी बातें यहाँ तैयार कर ली है, मरण के बाद तो इसमें अब बस नहीं चलेगा। मैं एक इंद्रिय नहीं होना चाहता हूँ, ऐसी जिद न चलेगी मरते समय। अगर कीड़े मकोड़े बनना है तो मैं नहीं बनना चाहता हूँ, यह जिद न चलेगी। क्या कहना चाहते हैं? ये भगवान कुछ नहीं देने वाले, उनके पास जाकर बाहरी चीज कोई मांगने की कोई बात नहीं। जैसे अपने भाव हुए, जैसे रागादि परिणाम हुए, वैसे कर्म का बंधु हुआ। एक ही नहीं जाना, जाने वाले भाव किए हैं उसका बंधु तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाना चाहता कहने से कुछ नहीं चलेगा, तेरी जिद नहीं चलेगी। इस भाव में चाहे पुण्य वो कुछ भी थोड़ी जिद कर ले, जैसे किसी ने मना भी कर लिया तो यहाँ पर जीत चल जाती, मगर मरण के बाद की बात की भी बात सोचो। भैया अपना स्वरूप देखो, मैं तो इस जगत का सबसे निराला जीव पदार्थ हूँ। यदि यह सत्य स्वरूप उपयोग में बचा लूँ तो अपने में अपने आप स्वयं सुखी हो सकूंगा। यही रुकेंगे।